طریقے سے ظالم کو اس طرح سے ہرا دو کہ ظالم خود بھی مان لے کہ ہاں ہارا تو میں آج کے دن ہوں اپنی جگہ. اس میں ایک جملہ میں اور کہہ دیتا ہوں, اور وہ یہ کہ جب یزید نے اہل بیت کو کہا کہ یو آر فری, مولا سجاد سے کہا میں آپ کو رہا کرتا ہوں, مولا نے کہا کہ میں اپنی پھوپھی سے پوچھ کے بتاؤں گا, اور آ کے کہا ہماری تین کنڈیشن, یہ تین کنڈیشن ماننا ہے تو ہم رہائی اختیار کریں گے. کنڈیشن کون لگاتا ہے؟ جیتنے والا کنڈیشن لگاتا ہے یا ہارنے والا کنڈیشن لگاتا ہے؟ جیتنے والا کنڈیشن لگاتا ہے, ہارنے والا ہر چیز ایکسپٹ کرتا. کنڈیشن یزید نہیں لگا رہا, سجاد کی کنڈیشن ہے یزید کو ہر چیز پہ یس 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 کرنا پڑ رہا. مظلومیت کی کامیابی, مگر قرآن کریم میں بھی اگر آ کے آپ دیکھیں, رسول خدا نے بدر میں کتنی بڑی کامیابی حاصل کی, خود پیغمبر کا جملہ تھا بیفور دا اسٹارٹ آف غزوہ بدر, جسٹ بیفور, اے مدینے والوں اے مسلمانوں آج مکے نے اپنی کریم تمہارے سامنے پیش کی, اکباد اپنے جگر کے ٹکڑے نکال کے تمہارے سامنے رکھ دیے. بدر بہت بڑی کامیابی, اوہد ہارتی بھی جنگ علی کی ذوالفقار کے نتیجے میں کس طرح مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی. جھوٹ لکھتے ہیں وہ ہسٹورین جو کہتے ہیں کہ اوہد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی. شکست تو کہتے کہ مکے والوں کا مدینے میں قبضہ ہو جاتا, مکے والے رسول خدا کو شہید کر دیتے, وہ کیا مشن لے کے مکے سے آئے تھے؟ اسلام سے ریونج لینا ہے, ختم کرنا, آخر میں وہ بھاگ کے گئے, اس کو شکست نہیں کہیں گے. بہت ہی سلینگ سی ایگزامپل دے دوں, اور اتنے سویلائز لوگ بیٹھے ہیں کہ شاید ان کو یہ مثال بری لگے, لیکن بہرحال یہ معاف کر دیجئے گا. پہلے ہاف میں اگر کوئی ٹیم ہار رہی ہو تو یہ نہیں کہا جائے گا یہ ہار گئی, دیکھا جائے گا میچ کے ختم ہونے پہ کیا ریزلٹ نکلا ہے. تو اب اگر آدھی جنگ تک ابو سفیان اور اس کی فوج جیت رہی تھی تو اس کو کوئی تھوڑی کہا جائے گا مسلمان ہار گئے, اینڈ دیکھا جائے گا مسلمان مدینہ چھوڑ کے بھاگے کہ کافر مدینہ چھوڑ کے مکے کی جانب بھاگے. تو احد کامیاب, بدر کامیاب, خندق ایسی کمر ٹوٹی عمر ابن عبدود کے مارے جانے سے کہ لاسٹ لڑائی تھی, اس کے بعد کبھی بھی کفار مکہ مدینے پہ اٹیک کر ہی نہیں سکے, کافروں کی جانب سے یہ لاسٹ لڑائی تھی خندق. پھر خیبر, ایسی مسلمانوں کی کامیابی کہ آج تک اس کا ریونج مختلف طریقوں سے لیا جا رہا. یہ جملہ بھی ایسا ہے کہ کون ریونج لے گا خیبر کا, لیکن اس کی ڈیٹیل وقت کی وجہ سے نہیں بتا رہا ہوں. آگے بڑھی, ہنین, بہت اہم جنگ ہے ہنین کی, جو سعودی عرب کے ملاؤں سے ہر سال حج کے موقع پر ہم لوگوں کا ایک مناظرہ ہوتا ہے, ایک ڈائلاگ ہوتا ہے. یہاں پہ آ کے وہ خاموش ہو جاتے ہیں, اور ان کی خاموشی کا مطلب کیا, قائل نہیں ہوتے ہیں, ہتھکڑی ڈال کے پھر جیل میں ڈال دیتے. یہاں تک تو وہ باتیں کرتے ہیں. بھئی کیا مدینے میں جتنی زیارتیں ہم لوگ پڑھتے ہیں, مدینے کی زیارتیں کرنا بھی کرنا بھی ہے اور پڑھنا بھی, فزیکلی آپ کا اپیئرنس دین ریسٹیشن آف زیارت, اس میں اونلی ایک زیارت ہے جس میں لعنت کا فقرہ آیا. پورے مدینے کی ساری زیارتیں آپ دیکھ ڈالی, لعنت کا فقرہ صرف ایک میں آیا ہے, اور اگر آپ نے یہ زیارتیں نہیں پڑھی اور میں پوچھوں کہ آپ گیس لگائیے تو آپ گیس نہیں لگا سکیں گے. ہمارے حساب سے, میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں, لعنت کا فقرہ شہزادی کی زیارت میں آنا چاہیے تھا. لعنت یعنی دشمنوں پر, نہیں اس میں نہیں, اس حسن کے زیارت میں آنا چاہیے تھا جس کے جنازے پر بھی تیر برسائے گئے. زندوں کو تو آدمی ٹارچر کا نشانہ بناتا ہے, مرنے کے بعد ڈیڈ باڈی کا احترام ہر جگہ. یہ فقرہ لعنت کا کہاں آیا؟ یہ آیا شہدائے احد کی زیارت. ایک زیارت ہے خالی, تو اب ہم لوگ وہاں جاتے ہیں, جب زیارت پڑھتے ہیں جیسا بک میں لکھا ویسے پڑھتے ہیں, فوراً دوڑ کے آ جاتے ہیں وہ متوے. وہاں کی جو ریلیجس پولیس ہے, اب آنے کے بعد پھر اگر انڈین اور پاکستانی ہے تو تم سے تو بات ہی نہیں کرتے, رو رو کہہ کے بھگا دیتے. آپ نے اپنا پاسپورٹ دکھا دیا مثلا, اب آپ کا تو احترام سبھی لوگ کرتے ہیں, اور بہت سے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ اللہ میاں بھی قیامت کے دن احترام کریں گے, بھائی امریکہ کا گرین کارڈ ہولڈر آ رہا, خیر وہ تو قیامت کے دن ہم دیکھ لیں گے, لیکن مسئلہ یہ ہے जब लोग हमसे ये कहते हैं कि मौलाना दाढ़ी के बारे में आप इंडिया में पढ़िए यहां ना पढ़िए, क्यों यहां क्यों ना पढ़े, कहिए अमेरिका, इसका मतलब ये कि समझते हैं कि रिलीजन में भी उनको एक खास क्लास दी गई। हिजाब के बारे में वहां पढ़िए, यहां मत पढ़िएगा हिजाब के बारे में, क्यों भाई यहां क्यों ना पढ़े, क्या यहां के मोमिनात पे इस्लाम नहीं है? नहीं, कहा नहीं, एक स्पेशल इनके लिए जो है ना, हर जगह ये जो यूरोपियन नॉर्थ अमेरिकन या अमेरिकन। तो खैर ये बात तो बहुत मजाक में कहीं चली जाएगी, खुलासा ये कैनेडियन पासपोर्ट है, अमेरिकन पासपोर्ट है, तो फिर वो इस तरह से बात नहीं करते हैं, वो रिलीजियस पुलिस मना करते हैं कि ये जायज नहीं है, गलत है, हराम है, शिर्क। उसमें एक सवाल ये होता है, आर्गुमेंट तो होते हैं कि भाई ये वो लोग हैं भागे और ये किया और जुल्म किया। भाई शोदाए ओहद यानी ओहद में जिन्होंने जनाबे हमजा को शहीद किया हम उन पे लानत कर रहे हैं, हम किस पे लानत कर रहे हैं जिन्होंने हमजा को शहीद किया। अब उसमें नाम तो हिंदा कहा जाता है लेकिन ना जियारत में हिंदा का नाम है ना हम लोग बहस में ये नाम लेके आते हैं, तो उनका एक ही जवाब होता, रसूलुल्लाह ने फतेह मक्का के दिन एक ओपन एमिनिटी दे दी थी और कहा था कि आज हर एक को माफ किया जाता है इसने इससे पहले जो भी किया हो। तो ओहद का वाकया फतेह मक्का से पहले का है? हमने कहा बिल्कुल है, मक्का 8 हिजरी और 2 हिजरी, 2 पहले आता है 8 बाद में आता, यकीनन पहले का। कहा जब रसूलुल्लाह ने माफ कर दी। अच्छा फतेह मक्का के मौके पे रसूल ने माफी दी, ये इतनी फेमस चीज है इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, ना आप ना हम ना वो लोग, वो तो खैर इसको अपना आर्गुमेंट बनाते। जब रसूलुल्लाह ने सबको माफ कर दिया तो आप कौन है? ये रसूल माफ कर रहे हैं और आप लानत भेज रहे हैं। अब ये उनके हिसाब से उनका एक बहुत ही वैलिड किस्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता, और यहां पे इस पॉइंट के वैसे तो बहुत सारे और जवाब है, मगर एक जवाब इसके बाद ये भी है, जंगे हुनैन, वो सारे लोग जो ओहद में भागे वही लोग हुनैन में भागे, और वही सारी कॉन्सिपरेंसी जो रसूल को कत्ल करने की मदीने में की गई थी वही हुनैन में की गई, तो बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई। यही वजह कि दुआए नुतबा में भी यह जिक्र और जियारत आशूरा में भी। यजीद इसको दबा गया, यजीद ने क्या कहा, मैंने बद्र ओहद का रिवेंज लिया, लेकिन दुआए नुतबा वगैरह में क्या है, अहकाद अल बदरिया वल हुनैनिया, करबला में रिवेंज लिया गया बद्र का और हुनैन का, बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है हुनैन की, कभी इसकी डिटेल उर्दू में पढ़िएगा। आजकल बाज इंग्लिश स्पीकर हुनैन को बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश में पढ़ते हैं, लेकिन खैर बात कहीं से कहीं जा रही है। खुलासा ये कि ये सारी जंगें जिसमें मुसलमानों को इन द एंड कामयाबी हुई, बद्र, ओहद, खंदक, खैबर, हुनैन, ताइफ, सब, कभी कुरान ने नहीं कहा इन्ना फतह नलका फतह मुबीना, हमने तुम्हें कामयाबी दी। ये कहा जब रसूल खुदा ने सुलह हुदैबिया पे दस्तखत करके बिल्कुल स्टाइल चेंज किया, इस तरह से कि रसूल के साथी तक कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह आप इतना झुक कर क्यों ये सुलह कर रहे हैं, नाउ वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बदर में आपको ये करना चाहिए था, ये ह्यूमन नेचर है, जब वीक हो तो दुश्मन के आगे हाथ जोड़, आज अब स्ट्रांग हो तो रिवेंज लो। पैगंबर ने उल्टा किया, बदर में वीक थे लेकिन कहा कि वन बाय वन हम जंग करेंगे, वो हुदैबिया में पैगंबर सो स्ट्रांग कहा कि नहीं हम मजलूमियत के जरिए से दीन फैलाएंगे। तो जिस तरह कुरान ने बद्र, ओहद, खंदक, खैबर के मुकाबले में हुदैबिया को फतेह मुबीन कहा, जिस तरह से करबला के मुकाबले में अरबईन को फतेह मुबीन कहा गया, उसी तरह से बाकी सारे मारके अपनी जगह कोयटा की कामयाबी यकीनन एक फतेह मुबीन की कामयाबी है। मजलूम लोगों को हमारा सलाम उन औरतों पर जो इतनी शदीद सर्दी में अपनी गोद में न्यू बॉर्न बेबी लेके 3 दिन जमीन पे बैठी रही, कोई वहां से हिलने को तैयार ना हुआ। हमारा सलाम उन छोटे छोटे बच्चों पर जो या हुसैन कह के 3 दिन तक उसी इंतहाई शदीद सर्दी में सड़कों पे बैठे रहे। हमारा सलाम उन बूढ़ों पर, इन सब ने इतनी बड़ी कामयाबी हमारे सामने पेश करके आज भी बताया कि जब कोयटा के ऐसे माहौल में मजलूमियत के जरिए से इस्लाम कामयाब हो सकता है तो क्या न्यू जर्सी का एक नौजवान दाढ़ी रखने को तैयार नहीं होगा? न्यू जर्सी की एक मोमिना हिजाब करने को तैयार नहीं होगी? आज हम लोग मिक्स गैदरिंग और म्यूजिक छोड़ने को तैयार नहीं होंगे? मौलाना यहां के हालात बहुत मुश्किल हैं। मुश्किल उसको कहते हैं, आके देखिए वो और हम और आप, हम सब की रूट एक है, वो है मुश्किल, उसमें उन्होंने बताया कि मुश्किल को किस तरह से कामयाबी में बदला जाता है मजलूमियत के जरिए। वो जालिम की इतनी बड़ी फोर्स का मुकाबला करके कामयाबी हासिल कर रहे हैं, और यहां के लोग ऐशो आराम के अंदर भी इस्लाम पे अमल करने को तैयार नहीं। लेकिन अगर असल जुमला मेरा बाद में था, ये तो पता नहीं कैसे मेरी जबान पे आ गया, असल जुमला इसके बाद का था। वो क्या था? हुदैबिया की फतह के, अच्छा ये जुमला असल में पाकिस्तान वालों के लिए है तो आपके लिए है नहीं, फिर भी पढ़ रहा हूं एक जुमला खाली, और वो ये अब जो जुमला पढ़ रहा हूं कि हुदैबिया की कामयाबी के बाद अबू सुफियान ने क्या कहा था कि नाउ वी केम टू दिस कंक्लूजन कि हम मोहम्मद को मैदान में शिकस्त नहीं दे सकते हैं, सो लेट्स ज्वाइन देम, अब हमें इनको ज्वाइन करके इस्लाम में सारी खराबी पैदा करना। चुनांचे उसके फौरन बाद अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल किया या जाहिर किया। कामयाबी के बाद दुश्मन अपनी स्ट्रेटेजी या तरीका कार बदलता, मोमिन की जिम्मेदारी है कि वो कामयाबी में इतना ज्यादा प्राउडी ना हो जाए कि उसे पता ना चले कि जो हार के गया है ये वापिस आएगा रिवेंज लेने के लिए। ये क्वेटा वालों से, पाकिस्तान वालों से मैं कहता हूं, ये भी मैं बता दूं कि क्वेटा का तो जिक्र बार बार मैंने इसलिए किया कि क्वेटा के अंदर ये ट्रेजेडी हुई, 86 मैयतें सड़क पर रख के लोग बैठे थे, लेकिन पाकिस्तान में 150 से ज्यादा जगहों पर हर शहर के मोमिनीन, मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, पूरा पाकिस्तान जो था बंद होकर रह गया था। आपने कराची की बात की, लेकिन कराची से लेकर पूरा इंटीरियर सिंध, सखर, रोड़ी, खैरपुर, सारे घर से निकल के आए, नेशनल हाईवे लाहौर, हत्ता ये कि गिलगित, बल्तिस्तान, पारा, चिनार, तो 150 से ज्यादा जगहों के ऊपर लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और यही एक जुमला कहा कि हमसे आके कुछ ना कहो कि जी डिस्पल्स हो जाएगी, ट्रेनें रुक गई, हाईवेज बंद हो गई। पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी कौम का ऐसा प्रोटेस्ट नहीं था, पूरा मुल्क जो था वो पैरालाइज हो गया। हर जगह के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने आके कहा कि भाई आप देख रहे हैं सड़कें बंद हैं, लोग रुके हुए हैं, कहा जाके क्वेटा वालों को बताओ, शहदा वो जब वो अपनी जगह से खड़े होंगे तो हम अपनी जगह से खड़े होंगे, हम उनको सपोर्ट करने आए, हम अपना कोई प्रोटेस्ट करने नहीं आए हैं, इस तरह से ऐसी यूनिटी दिखाई। लेकिन दुश्मन अब इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और पाकिस्तान वालों से मैं कहता हूं कि बी वेरी केयरफुल, अब बहुत एहतियात करना है, मुख्तलिफ साजिशें की जाएंगी। जिस तरह से अबू सुफियान और हिंदा ने जब यह देखा कि नाउ वी आर अनएबल टू फाइट मोहम्मद इन द बैटल फील्ड, उन्होंने पूरी अपनी पॉलिसी बदली, कहा मुसलमान बनकर इनके बीच में आकर इनका साथी बनकर इस जैसा बनकर इस्लाम को नुकसान पहुंचाना है। और आपने देखा जो नुकसान बदर में ना हुआ, जो ओहद में ना हुआ, जो खंदक में ना हुआ, जो खैबर में ना हुआ, वो उसके बाद हुआ। पहलुए जहरा का कोड़ा, खाना सैयदा पे आग, हसन मुश्तबा के जनाजे पे तीर, तो ये बहुत एक एहतियात, कामयाबी के बाद उसका फॉलो अप बहुत एहतियात की जरूरत है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह मैसेज आपके लिए नहीं है, पाकिस्तान वालों के लिए है। वहां भी जाता रहता हूं, अभी भी एक महीने पहले था, फिर इंशाल्लाह पहुंच रहा हूं, तो यह बात वहां आगे बढ़ाऊंगा भाई अपने मौजू पर। सबसे बड़ी कामयाबी, कुरान ने यह कहा कि वो कामयाबी जिस पीस ट्रीटी के जरिए से हासिल हुई, गर्च उसी वक्त मुनाफिक ने अपने फेस चेंज किए, नए नए मास्क लगा लिए, भैया मास्क लगा के अबू सुफियान इस्लाम में आया है, वरना मौला एक जुमला उससे नहीं कहते। जब शहजादी पर इतने मजालिम हुए तो अबू सुफियान सीधा मौला के पास गया, हर एक को जुमला उसका याद है, या अमीरुल मोमिनीन, नहीं अमीरुल मोमिनीन, या अबुल हसन, आपके होते हुए खिलाफत किसी और को कैसे मिल गई, और इतना जुल्म आपकी फैमिली पर हुआ। जब किसी पे जुल्म होता है ना, उस वक्त वो आदमी विक्टिमाइज होता है ना, तो ऐसे शॉकिंग कैफियत में होता है कि जो भी ऑफर करता है हेल्प की, उसकी ऑफर कबूल कर लेता। या अबुल हसन एक इशारा कर दे, आज शाम से पहले पूरा मदीना आपका फेवर करने वाली फौज से भरा होगा। मौला का जुमला रिप्लाई ये नहीं था कि नो वी डोंट नीड योर हेल्प, का तुम इस्लाम के इतने फेथफुल वफादार किस दिन से बन गए, उसको ये कहने की हिम्मत नहीं पड़ी जिस दिन से मैंने कलमा पढ़ा। पता हर एक से कह सकता हूं, अली से कैसे कह सकता हूं, अली अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मास्क इस्लाम का लगा के आया, इसके पीछे इसका फेस वही 360 बुतों वाला, यह बड़ा सख्त मरहला होता। और इस स्टेज पर हमें इस हवाले से बहुत ज्यादा अलर्ट होना कि सबसे ज्यादा, अभी जो एक मिसाल मैंने दी मक्के की, लेकिन अहले बैत याथार नहीं बल्कि आप ये कहिए कि पूरी अंबिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ी विक्ट्री कौन सी थी? करबला। आदम से लेके खातम तक और खातम से लेके ग्यारहवें इमाम तक हर नबी ने, हर वली ने, हर वसी ने, हर इमाम ने अपने जमाने में एक जिहाद किया। हम किसी का स्टेटस हाई और किसी का स्टेटस लो नहीं कर सकते, मगर सबसे बड़ा जिहाद हुसैन ने किया। लेकिन जो बात मैं अभी कह रहा था, करबला की इतनी बड़ी कामयाबी के बाद क्या बनू उमैया ने आसानी के साथ इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया होगा कि हम हार गए तो हार गए? नहीं, उन्होंने अपनी दुश्मनी जारी रखी लेकिन एक तरीका बदला। ये चौथे इमाम का जमाना, वही चीज इस वक्त हमारे सामने आ रही। वेन एवर वी आर विक्टोरियस, जब कभी हम विक्टोरियस हो दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, वरना तो हमेशा मोमिन कामयाब होता है, लेकिन तो फौरन देखना दुश्मन क्या तरीका करेगा। चौथे इमाम के जमाने में दुश्मन ने क्या तरीका किया? अब मैं एक जुमला कहूंगा तो आप फिर मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मौलाना के मजलिस में बस यही एक जुमला होता है, इसी की रिपीटेशन। क्या अभी अभी पहला अशरा जो बर्मिंगम में पड़ा उसके और अरबईन के अशरे के दरमियान जितने अशरे आए सब में मैंने इसी मौजू पर बात की कि चौथे इमाम के जमाने में क्या हुआ। चौथे इमाम के जमाने में पॉलिसी चेंज हुई, किसकी? बनू उमैया की। और कहा कि अब अगर अहले बैत के मानने वालों को वीक करना, तलवार से तो ये वीक नहीं होते, हमने करबला में देख लिया, करबला से बड़ी तलवार कहां यूज हुई होगी। जेल में डालने से तो ये वीक नहीं होते, हमने शाम में देख लिया। अगर इन्हें रिफ्यूजी बना के निकाल दो तो ये वीक नहीं होते, रसूल खुदा की हिजरत और जनाब जैनब का मदीने से डिमस्कस जाना हिजरत थी। भाई तरीका ये है ना कि बहुत स्ट्रांग है, इसको यहां से निकाल दो। अब बर्मा के मुसलमानों पे क्या हो रहा, इंडोनेशिया के शियों पे क्या हो रहा, कितनी बातें हैं जबान पे, एक एक जुमले में भी लेके आऊं तो एक घंटा तो इसी में लग जाता। ये सब हमारे कॉमन प्रॉब्लम है। बर्मा में यही तो हो रहा है ना कि पूरी जेनोसाइड की कैफियत, पूरी कौम को निकाला जा रहा है, जाओ यहां से, इस मुल्क से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। इसको उर्दू में कहा जाएगा जेलावतन करना या रिफ्यूजी बना देना। ये तीन तरीके हैं भैया, कत्ल करो या जेल में डालो या उनको उनके इलाके से निकाल के जंगल में भेज दो। बनू मैया ने करबला तक ये तीनों तरीके इस्तेमाल किए, तीनों तरीके इस्तेमाल किए। कैसे? करबला में तलवार, कैसे? शाम में कैद, कैसे? मदीने जो रसूल खुदा ने मक्के से मदीने जो हिजरत की, याद दिला दूं कि आज 2nd of Rabiul Awwal, आज रसूल खुदा गारे सौर में 3 दिन ठहरे हुए, मकड़ी ने एक जाला बुन दिया। इत्मीनान रखिए कि मैं घड़ी देख रहा हूं, मुझे मालूम है कि जो बच्चे कुछ आ गए यहां पे कल इनको स्कूल जाना, बाकी लोगों को ऑफिस जाना, मुझे मालूम। लेकिन बस ये बात एक पूरी तो हो जाए कि रसूल खुदा 1st of Rabiul Awwal इस्लामिक कैलेंडर की बहुत अहम डेट है हिजरत, लेकिन रसूल खुदा ने हिजरत नॉन स्टॉप नहीं की। पहली को मक्के से निकले, 2nd को गारे सौर में 3 दिन ठहरे। अभी पैगंबर गारे सौर में, उस गार में जिसकी जियारत उमरे और हज पर जाने वाला हर आदमी करता, बहुत दूर से करता है, नीचे से करता है, लेकिन गारे सौर वहां है रसूल, यानी हिजरत भी चल रही है। हिजरत क्या? जलावतन। हमारे शहर में तुमको हम न तलवार से खत्म कर सके, न कैद से, शहर से निकाल देते। और सबसे अहम रोल उस वक्त भी बनू मैया का था। और इसी तरह से जनाब जैनब को मदीने जब वापस आ गई थी, अक्सर एक सवाल करता हूं लेकिन चूंकि इसका जवाब मैं खुद दे भी चुका हूं, मैं तो खैर एक स्टूडेंट, अक्सर सवाल करता हूं कि जब ये अहले बैत वापस मदीने आ गए देन फिर क्या हुआ? ये फुल स्टॉप हम लोग क्यों लगा देते? उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि मुझे याद है कि जो लास्ट स्पीच मैंने मस्जिद अली में की थी आज से पहले, आपको याद नहीं होगा, मुझे याद, रजब के महीने में 15th of Rajab शहजादी जैनब की वफात की तारीख थी, वो भी मैंने स्पीच यहां लास्ट स्पीच की थी 1.5 साल पहले, वो जनाब ज़ैनब की हालात पर थी और उसमें ये पूरी रिवायत पढ़ी थी। लेकिन अगर वो नहीं भी पढ़ी होती तो अब टाइम नहीं है कि मैं उसको रिपीट करूं। जनाब ज़ैनब जब मदीने आ गई तो उनको मदीने में रहने नहीं दिया गया, फिर उनको मदीने से निकाल दिया गया। बनू उमय्या ने सोचा कि एवरी पॉसिबल मीन कत्ल, हिजरत, कैद, हर तरह से हमने अहले बैत को उनके मिशन से हटाना चाहा, ये और स्ट्रांग हो गए, अब क्या करें। ये चौथे इमाम के जमाने में एक प्लानिंग की गई, बस उसको जहन में रखिएगा। और वो ये की गई कि अब एक ही तरीका, अहले बैत के चाहने वालों को करप्ट कर दो। बहुत मैंने अपने अल्फाज में ये बात कही है, अहले बैत के चाहने वालों को करप्ट कर दो, इतना गुनाहगार बना दो। अहले बैत के चाहने वालों का कैरेक्टर हमेशा से बहुत ही क्रिस्टल क्लियर था, जुल्म होते रहे, घर जलते रहे, बच्चे मारे जाते रहे, रोजी सबसे पहले दरवाजा बंद किया जाता है रोजी का। शहजादी कौनैन से फदक छीनने का एक मकसद यह भी था, लेकिन का ये सारे जुल्म कर ली अहले बैत ने अपने कैरेक्टर को नहीं, अहले बैत के शियों ने अपने कैरेक्टर को नहीं बदला। एक छोटा सा जुमला पढ़िएगा, कभी इसमें पूरी मजलिस सुन लीजिएगा। अभी एक जुमला तारीख तबरी में, कि जब इब्ने ज़ियाद को गवर्नर बना के कूफे भेजा गया, जिस दिन मुस्लिम इब्ने अकील आए थे कूफे में, गवर्नर कुछ कोई और था, यजीद के स्पाई ने कहा कि बहुत ही लीनियंट किस्म का गवर्नर, स्ट्रिक्ट आदमी चाहिए। इब्ने ज़ियाद बसरे का गवर्नर था, उससे कहा गया कि अब कूफा भी तुम संभालो, 6 महीने वहां रहो, 6 महीने यहां। वो कूफे आए, मुस्लिम इब्ने अकील गैबत में चले गए, हानी इब्ने उरवा के घर में कुछ दिन पोशीदा रहे, कुछ दिन कहीं और, वो यानी सीन से हट गए। इब्ने ज़ियाद उनको ढूंढना चाहता है, कहां, इनको शहीद करूंगा तो कूफे का मूवमेंट खत्म हो जाएगा। बहुत मशहूर वाकयात है, मैं सिर्फ एक जुमला याद दिला रहा। क्वेटा के बाद खुदा ना करे कहीं ऐसा ना हो जैसे कर्बला के बाद ऐसा हुआ, जैसे अबू सुफियान के इस्लाम कबूल करने के बाद ऐसा हुआ, ये हो चुका है हिस्ट्री में। अभी तक एक्चुअल सादिक हसन तो आपको मेरी मजलिस में कहीं नजर नहीं आए होंगे। मैंने कब्र की कोई बात की, कोई सांप दिखाया, कोई बिच्छू से डराया, कोई जहन्नम के शोले दिखाए, कोई जहन्नम का घड़ा दिखाया, अभी तक तो एक्चुअल तो आए नहीं। वो इतने अहम मौजूआत थे इस वक्त हमारी कौम के कि मैं भी अपने आप को भूल गया, लेकिन अब आ रहा हूं उस तरफ। और बहुत ही मुख्तसर वो ये कि इब्ने ज़ियाद ने कहा मुझे मुस्लिम चाहिए, कहां है किसी को नहीं पता, ऐसी जगह पे उन्होंने अपने आप को हिडन किया है या गायब किया। अपने गुलाम को बुलाया, बहुत मशहूर गुलाम है, लेकिन छोड़ दीजिए उसका नाम, उनका ज्यादा नाम आने से जरा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। गुलाम को बुलाया, कहा मैं जब तुझे 3 दिन दे रहा हूं, विद इन 3 डेज मुस्लिम को ढूंढ के लाओ। अब वो गया, 4th दिन सुबह की नमाज के बाद इब्ने ज़ियाद के पास आया। अभी इब्ने ज़ियाद नया नया कूफे का गवर्नर बना है, अभी मुस्लिम भी गिरफ्तार नहीं हुए, और कहा कि मुस्लिम तो मुझे नहीं मिले, अली का एक पक्का शिया मिल गए। अब मसला ये थे कि खाली मुस्लिम गायब नहीं हुए, जितने शिया थे वो सब सीन से या पिक्चर से हट गए थे। कहा कि एक अली का शिया मिल गया, अब बाकी काम तेरा। इब्ने ज़ियाद ने कहा दैट्स ओके, बस एक शिया मिल गया तो उसको उससे मैं ट्रेस कर लूंगा। लेकिन कहा कि ये बताओ ये शिया भी कैसे मिला। अब जवाब सुनिए, तारीख तबरी में ये जवाब लिखा है, उसने कहा कि मैं 3 दिन मुस्लिम को ढूंढता रहा, ना कोई मुस्लिम का पता मिल रहा है ना किसी शिया का, कूफे में बहुत कम शिया थे। ये गलत है कि कूफे वालों ने हुसैन को शहीद किया तो शियों ने शहीद किया, 2 डिफरेंट चीजें। कूफे में शिया बहुत कम थे, गायब नहीं मिल रहा। कहा कि मैंने 3 दिन सुबह शाम रात ढूंढता रहा, जो आपने मुझे टाइम दिया था 3 दिन का पूरा हो गया, खत्म। मैंने खुद ये समझ लिया कि अब फेलियर। चुनाचे मैं 3 दिन के बाद बहुत थका हुआ था, मैं जाके मस्जिद कूफा में आराम के लिए लेट गया मिडनाइट को, कि सुबह जो है भाई मस्जिद कूफा के बिल्कुल बैक पर तो इब्ने ज़ियाद का दरबार था। अब इतने सारे लोग यहां बैठे हैं ज़ायरीन, बल्कि शायद ऑलमोस्ट 100%, कि मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, कि भाई इब्ने ज़ियाद को रिपोर्ट देना। मिडनाइट तो रिपोर्ट नहीं दी जाएगी, सुबह सवेरे दी जाएगी। तो अब जो आधी रात से लेकर सुबह तक मैं यहीं आराम करता हूं, कहां अपने घर पर जाऊं, आराम करता हूं, सुबह दरबार में आके पहली रिपोर्ट दूंगा और मेरी ड्यूटी खत्म। मैं बैठ गया। मस्जिद कूफा आलम इस्लाम की तीसरी अहम तरीन मस्जिद, पहली खाने काबा वाली, दूसरी रौजा रसूल वाली, तीसरी मस्जिद कूफा, बहुत अहम मस्जिद। असल में उस मस्जिद कूफा को भी हम मस्जिद अली कह सकते हैं। वो मस्जिद कूफा की शोहरत सारी अली की वजह से है। इस वक्त भी मैं मस्जिद अली में बैठा हूं, और यह भी याद दिला दूं कि दुनिया की सबसे पहली मस्जिद रसूल खुदा ने हिजरत के मौके पर बनाई। हिजरत जब की ना, तो आज तो गारे सौर में 12 रबीउल अव्वल को रसूल खुदा कुबा पहुंचेंगे, जो मदीने का एक आउटर सबर्ब है, वहां रुक जाएंगे। 3 दिन के बाद मौला अली खानदान की औरतों अपनी मां और फातिमा जहरा और दीगर औरतों को लेके ज्वाइन करेंगे। तो रसूल पहली मस्जिद वहां बनाएंगे, फिर मदीने एंटर होंगे। वो मस्जिद का नाम मस्जिद कुबा है, द फर्स्ट मॉस्क बिल्ट इन इस्लाम, फर्स्ट मॉस्क। लेकिन अजीब बात यह है कि मस्जिद रसूल ने अपने हाथों से नहीं बनाई। अली से कहा तुम मेरे ऊंट पर बैठो, जहां तक ये ऊंट चलेगा जिस पर अली बैठे हैं, पैगंबर ने उसको मस्जिद डिक्लेयर किया। तो कायनात की पहली मस्जिद मेरे मौला के कदमों की वजह से बनी, वो भी मस्जिद अली और ये भी मस्जिद अली। अजीब अजीब जात है मेरे मौला की। ऊंटनी पर बैठा तो दुनिया की पहली मस्जिद बनी, और विलादत हुई तो 360 बुतों का घर अल्लाह का क़िबला और अल्लाह का घर करार पा रहा, ये मेरा मौला। मगर गवर्नर कूफा इब्ने ज़ियाद के गुलाम का जुमला सुन लीजिए। वो कहता है कि मैं मस्जिद कूफा में बैठा, ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉस्क इन इस्लाम, मस्जिद कूफा। चुनाचे अगर आप कभी खाने काबा गए हो, गए तो हैं इतने सारे चेहरे, और जो लोग मस्जिद जो खाने काबा गए तो मस्जिद नबवी तो साथ में ऑटोमेटिक जाते हैं। वहां भी आपने देखा होगा क्राउड आता है, क्राउड जाता है, क्राउड आ रहा है, जा रहा है। अभी कोई आदमी इबादत के लिए आया, 2 घंटे इबादत करके चला गया, तो नया ग्रुप आ रहा है, वो चला जाएगा, नया ग्रुप आ रहा है। कहा मैंने सारी रात देखा मस्जिद कूफा में भी नमाजी आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई 15 मिनट, कोई घंटा, कोई 2 घंटा, कोई 3 घंटा। ये इस आदमी को मैंने देखा सारी रात, न सिर्फ ये कि नमाजें पढ़ता रहा, बल्कि ऐसी नमाज, नमाज पढ़ने का भी एक स्टाइल होता है ना, नमाज पढ़ने पता चल जाता कि नमाज पढ़ तो रहे लेकिन दिमाग कहीं है, जहन कहीं है, नमाज एक बोझ बन रही है। और एक ऐसा नमाजी जैसे मासूमीन की नमाज है कि लगता है कि जैसे कोई दरख्त अपनी जगह खड़ा कि जरा सा मूवमेंट भी नहीं। मैंने इसको देखा, क्वालिटी वाइज भी इसकी नमाज देखी, क्वांटिटी वाइज भी नमाज देखी, सारी रात नमाज पढ़ता रहा और ऐसी नमाज। तो मैंने इसकी गर्दन पर हाथ डाल दिया, ऐसी नमाजें तो सिर्फ अली का शिया पढ़ सकता। आज अब पकड़ के लाया तो अली का शिया निकला। दुश्मन अहले बैत भी मानता था कि नमाज और ऐसी नमाज ये शिया की पहचान और कैरेक्टरिस्टिक है, ये अली वालों का किरदार था जिसे दुश्मन मानता था। लेकिन करबला के बाद का इनको करप्ट बनाओ, इनका किरदार खराब करो, इन्हें स्पॉइल करो, इनकी औरतों में भी हिजाबी फैलाओ, इनके नौजवानों में शराब और जुए और गैम्बलिंग और कैसीनो की आदत डालो, इनके बूढ़ों को नमाजों से हटाओ। भाई चौथे इमाम की एक हदीस, ये खबरदार कभी शराब ना पीना और जुआ ना खेलना, इसलिए कि दो चीजें देखकर मुझे यजीद का दरबार याद आता है। जब मेरी बहनें और फुफियां यजीद के पास गई, वो एक तरफ शतरंज खेल रहा है, दूसरी जानिब शराब पी रहा है। ये दरअसल अपने शियों के कैरेक्टर को ठीक करने की बात, कि शिया हर गुना कर लेगा, वो गुना नहीं करेगा जिस गुना से जैनब की बेपर्दगी याद आ रही। लेकिन चौथा इमाम इतना हाईलाइट जो कर रहा है मसले को, क्यों? बनु उमैया के हुक्मरानों ने कहा हमने अहले बैत को तो कत्ल भी कर लिया, उनका मिशन आगे बढ़ा, कैद भी किया, उनका मिशन आगे बढ़ा, जिला वतन भी किया, उनका मिशन आगे बढ़ा, इनके शियों को खराब कर दो, इतना खराब कि अब ये अहले बैत के नाम से घबरा जाए। छोटी सी मिसाल, मैं आपसे ज्यादा ही गुनाहगार हूं जाहिरी एतबार से, जैसा भी आता हूं आपके सामने, लेकिन हालत ये कि कई जगहों पर